جے دھولا.
پستک سولوی, لیکچر نمبر 9.
اوم نمہ سیتے, जासन्तु आवयवदि पश्यौ सुयदेवयामच्छं सुसुदेवयाय भक्ति सुदोवजोगो भाव्यो सम्मं आवहै नाणसिद्धिं नाणफलं चाविनिर्वाणम् तो सुदेवय विनमो दिग्भुत्तोपणमियूणभक्ति वोच्छामि जहासुक्तम् चारित्रमोहसकवणविः.
आचार्य श्री भीसेन स्वामी रचित यह जयधवला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टारू तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है. 16वीं पुस्तक में वही चारित्र मोक्ष अपना का अर्थाधिकार चल रहा है और हम आए हैं अब पृष्ठ संख्या 109 पर. हमने पहले जो पूरी प्ररूपणा देखी थी वो पुरुषवेदी जीव क्रोध के उदय से चढ़ने वाला शपक जो है उसकी प्ररूपणा देखी. अब मान के माया के और लोक के उदय से ही चढ़ने वाला पुरुषवेदी ही जीव, उसमें क्या अंतर है उसकी बात हमने देखी थी. तो कहते अंतर करने तक तो कोई अंतर नहीं था, यानी अंतर करने तक तो कोई डिफरेंस नहीं था. अंतर करने पर जो प्रथम स्थिति बनती है तो वो अलग अलग होती है. क्रोध के उदय से ही चढ़ने वाले के देखा था हमने तो पहली स्थिति अंतर्मूल प्रमाण बनती है और उस काल में क्या क्या होता है, तो अश्वकर्ण करण और उसमें अपूर्व स्पर्धक बनाता है और उसके बाद कृष्टि करने का कार्य होता है और उसके बाद फिर दोबारा प्रथम स्थिति बनती है. किसके? प्रथम संग्रह कृष्टि की, फिर द्वितीय संग्रह कृष्टि की, फिर तृतीय संग्रह कृष्टि की, अलग अलग बनती है, एक के बाद एक बनती है. इन सब का जो मिलकर जो काल है उतना मान से चढ़ने वाला प्रथम स्थिति बना पूरे काल, यानी उसको कहेंगे क्रोध का अश्वकरण कर, क्रोध का कृष्टिकरण और क्रोध का क्षपणा कर. वेदक तो पहले से ही कहेंगे उसको हम संग्रह कृष्टि का वेदक कह सकते हैं या क्षपणा का काल कह सकते हैं. तो ये इतना जो सारा मिलकर इसकी पहली स्थिति बनती है. मान से चढ़ने वाले के क्रोध का नाश स्पर्धक रूप से होता है. तो जिस समय में क्रोध वाला अश्वकर्ण करता है उस काल में ये क्रोध की क्षपणा स्पर्धक रूप से, जिस काल में ये कृष्टि करता है उस काल में मान वाला अश्वकर्ण करता है, जिस काल में क्रोध के संग्रह कृष्टियों का वेदन करके क्षपणा होती है उस काल में उसका कृष्टिकरण होता है, फिर मान का उदय होगा. तो क्रोध वाला जब मान का उदय करता है तभी मान वाला मान का संग्रह कृष्टि का उदय करेगा, यानी क्षपणा करेगा. माया में जितना मान का पूरा एक क्षपणा काल तक की जितनी स्थिति है वहां तक की माया वाले की प्रथम स्थिति बनेगी. तो वो सूर्य में क्रोध की क्षपणा करेगा, फिर मान की क्षपणा करेगा, फिर अश्वकर्ण करेगा, फिर कृष्टिकरण करेगा और फिर वो माया वाला और फिर उसका माया का वेदक काल, यानी माया का क्षपणा काल चालू हो जाएगा। माया का क्षपणा काल तक की जो बात है, वहां तक की प्रथम सिद्धि लोग वाला स्टार्टिंग से बना है, तो उसमें क्रोध की क्षपणा, मार की क्षपणा, माया की क्षपणा, फिर उसका अपना अश्वकरण, फिर उसका कृष्टिकरण, फिर उसका लोक का क्षपणा संग्रह पुष्टि रूप से। इसकी एक संदृष्टि बनाई थी मैंने, यानी उनकी अपनी नहीं, वो तो मैंने अपने ओर से बनाई थी, मैं आपको बताती हूँ, मुझे भी देखना पड़ेगा ना। अभी यहाँ के पेज नंबर कुछ याद नहीं है, क्योंकि ये तो अभी बने हैं पेज नंबर। अर्थ संदृष्टि में नहीं, उसके पहले जहाँ मैंने समझाया विषय ना, वहां पर सपना सार में। अभी कौन सी गाथा हुई अपनी? अब इसकी गाथा तो कोई सवाल ही नहीं है, यानी क्रोध से चढ़ने वाले की बात है, वो हो गई। मान माया लोग से चढ़ने वाले की बात है। 447 उसमें देखना, मैं आपको बताती हूँ पार्टी पर क्या ड्राइंग किया है। मैंने ये क्रोध की पहली स्थिति इतनी थी, उसमें उसने क्या कार्य किया है अभी उसको गौण करेंगे, और उसके बाद इसकी क्रोध का क्षपणा काल, यानी जिसमें उसके प्रथम संग्रह पुष्टि, द्वितीय संग्रह पुष्टि, तृतीय संग्रह पुष्टि उदय होकर नष्ट हो, यानी क्रोध का, क्रोध की प्रथम स्थिति प्लस क्रोध का क्षपणा काल। अब मान वाला क्या करेगा? यहाँ तक उसकी मान की प्रथम स्थिति और ऊपर उसका मान का क्षपणा काल, माया का, ये यहाँ तक माया की प्रथम स्थिति और उसके ऊपर उसका माया का क्षपणा कर, और लोक की, लोक की यहाँ तक प्रथम स्थिति और उसके ऊपर उसका क्षपणा काल, और उसके क्षपणा काल में तो वो तो सूक्ष्म लोक को भी पूरा क्षपणा काल 10वें गुण स्थान तक कहलाएगा। यानी एक एक की प्रथम स्थिति प्लस उसका क्षपणा काल, दूसरे की प्रथम स्थिति वो पूरी टोटल होगी, फिर उसके ऊपर उसका क्षपणा काल, तीसरे की प्रथम स्थिति उतनी सब होगी, उसके ऊपर उसका क्षमा कर, लोक पर उदय से चढ़ने वाला शुरुआत से ही इतनी लंबी प्रथम स्थिति करता है, और उसके पुष्टिकरण के बाद उसकी क्षपणा चलेगी।
इससे निकलता है कि माया और लोक से चढ़े हुए जीव का मतलब जो क्षपणा जो है कृष्टि रूपी होती है, जबकि क्रोध और मान के अगर अपने उस कषाय छोड़ेंगे तो कृष्टि रूप नहीं स्पर्धक रूप से होगी
ना, माया की भी स्पर्धक रूप से होती है, लोभ से चढ़ने वाले माया का भी स्पर्धक रूप से करेगा, लोभ से जो चलता है वो तीनों का स्पर्धक रूप से करेगा,
लेकिन माया का, अच्छा माया का लोभ वाला
करेगा ना, माया का जो है वो लोभ वाला करेगा,
लोभ का ही है कि वो जो अपने करेगा,
यानी लोभ का तो कृष्टि रूप से ही क्षपणा होगा, बाकी
तीनों का
पर के उदय से ही चढ़ता है तो उसके बाद। तो ये तो हमने कल देखा था, अभी यहाँ हम पढ़ेंगे 109 पृष्ठ पर आए हैं। यहाँ प्रश्न पूछा गया था, ये वहां से ऊपर से तीसरा सूत्र हिंदी में देख रहे हैं, 263 के ऊपर, लोभ, वह लोभ संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक के प्रथम स्थिति कितनी बड़ी होती है? अभी हमने देखा पार्टी पर, कहते वह कितनी बड़ी है, कितने प्रमाण वाली है, यह प्रश्न किया, अभी उसका उत्तर यहाँ हम पढ़ेंगे। जद्दे ही कोहे न वठिदस्स कोहस्स परमठिदि कोहस्स मानस्स मायाये च खवणद्धा तद्दे ही लोभे न वठिदस्स परमठिदि। क्रोध संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक के जितनी बड़ी क्रोध संज्वलन की प्रथम स्थिति तथा क्रोध मान और माया संज्वलन का क्षपणा काल उतनी बड़ी लोभ संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी श्रेय करना, क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक के प्रथम स्थिति होती है, हमने यहाँ जो ड्राइंग बनाया था, यहाँ क्या लिया, उन्होंने दूसरी भाषा में डायरेक्ट क्रोध के साथ कंपेयर किया, क्रोध की प्रथम स्थिति, क्रोध का वेदक काल, मान का वेदक काल, माया का वेदक काल, इसी संदृष्टि से सिद्ध होता है ना, क्रोध की प्रथम स्थिति, यहाँ क्रोध का वेदक काल है, सॉरी क्षपणा काल है, मान का क्षपणा काल है, माया का क्षपणा काल, इतनी लोभ की प्रथम स्थिति बनती है। इसे क्लियर होता है, लोक की प्रथम, फिर बाद में उसका लोक का क्षपना हो जाएगा अपने। आगे बढ़ें। क्रोध संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक के क्रोध संज्वलन की प्रथम स्थिति तथा क्रोध मान और माया संवेदन के क्षपणा काल को एकत्रित करने पर जितना प्रमाण उत्पन्न होता है उतनी बड़ी इसकी इसकी यानी किसकी, लोभ से चढ़ने वाले की प्रथम स्थिति होती है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। और इस प्रकार की प्रथम स्थिति यहाँ पर निरर्थक नहीं है, क्योंकि बार बार प्रश्नकार पूछते थे ना कि क्या हुई, इसका क्या प्रयोजन है इतनी लंबी, तो उसको जो क्रोध की क्षपणा करनी है, मान की, माया की, वो सब इसी में हो जाएगी, क्योंकि इसी प्रथम स्थिति के भीतर क्रोध मान और माया संज्वलनों के क्षपणा कालों, अश्वकर्णकरण काल तथा कृष्टिकरण कालों को क्रम से पालन करने वाले, यानी लोभ सहित शुरू से ही चढ़ने वाला पहले क्या करेगा, क्रोध की क्षपणा स्पर्धक रूप से, क्रोध की क्षपणा करेगा, फिर मान की क्षपणा, फिर माया की क्षपणा, फिर अश्वकरण और फिर पुष्टिकरण। तो इनको क्रम से पालन करने वाले इस क्षपक के इतनी बड़ी प्रथम स्थिति सप्रयोजन देखी जाती है, यानी वो बिना प्रयोजन की नहीं है।
हाँ,
क्रोध से लोभ से चढ़ने वाले ने तीनों की क्षपणा की, अपना वो लोभ का उसको अनुभव करता है। अश्वकर्ण ने किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, परंतु उसके अपने,
हाँ
तो उसी में वो जो अभी क्रोध मान माया लोभ का आपस में तो कंपेयर नहीं करना है अश्वकर्ण, तो उसके जो अनुभागों की रचना होती है, यानी वो तो घटकर अश्वकर्ण सहित, यहाँ तो अश्वकर्ण करण दिया है ना, तो अश्वकर्ण में क्या होता है वहाँ पर, हाँ पूर्व स्पर्धक बनेगी उसको, अभी दूसरे कषाय के साथ कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है, परंतु हमने देखा था उसका भी कांडक तो होता ही है, कांडक रूप से स्पर्धकों को ग्रहण करके नीचे नीचे हीन अनुभाग वाले जो बनते हैं वो तो यहाँ पर भी बनेंगे।
नहीं, हम लोग के अश्वकरण में दो हो रहे थे, एक तो जो अनुभाग का क्रम था ना, लोग का
कंपैरिजन कर रहे थे हम,
स्पर्धक कर रहे थे, ये जो यहाँ पर अपूर्व स्पर्धक नहीं बने,
अभी अपूर्व स्पर्धक बनेंगे इनके, और वो अश्वकर्ण भी क्यों हुआ था, क्योंकि कांडक हुए थे आपको याद होगा, तो ऐसे कांडक होगा यहाँ पर और उसके अपूर्व स्पर्धक बनेंगे। आगे सूत्र में बताते हैं इसी बात को सूत्रों के द्वारा, सप्रयोजन देखी जाती, यहां तक पढ़ा था तीसरी लाइन में, आधा पढ़ा था, अब इस प्रथम स्थिति के भीतर किए जाने वाले कार्यों के भेदों का निर्णय करने के लिए आगे के प्रबंध को कहते हैं, ये सूत्रों के द्वारा कहेंगे क्या क्या करेगा वो। कोहे न उठिदो जम्मी अस्सकर्ण करणम करेदी, लोभे न उठिदो तम्मी कोहम खवेदी, ये हमने ड्राइंग के द्वारा भी देखा था कि लोभ संज्वलन के उदय से क्षपक क्रोध संज्वलन के उदय से एक क्षपक श्रेणी पर चढ़ा हुआ क्षपक जिस काल में अश्वकर्ण करण करता है लोभ संगलन के उदय से क्षपक सैन्य पर चढ़ा हुआ क्षपक उस काल में क्रोध संगलन की क्षपना करता है। ये हमने देखा था स्पर्धक रूप से क्षपना होगी उसकी। क्षपना होगी का अर्थ क्या है? हाँ, संक्रमण से नष्ट होगा। अनुभाग में
और ये जो पुष्टि है
वो भी अनुभाग की ही बात है। अश्वकर्ण में हमने उसका जैसे मान में फिर क्रोध में ज्यादा फिर ऐसा था ना, मान क्रोध माया लोभ। अभी क्रोध में मैक्सिमम, फिर मान में, फिर माया में, फिर लोभ में, उसका क्रम बदल गया।
अनुपूर्वी का डिसिप्लिन चालू रहेगा, क्रोध मान में संक्रमण।
बिल्कुल, अनुपूर्वी तो अंतर करने के लिए
मान में संक्रमण
होना,
संक्रमण
होना तो सबका चल रहा है। संक्रमण तो सबका चल रहा है, परंतु संक्रमण होकर पूरा नष्ट होना इसको कहेंगे क्षपना। क्योंकि जिसका उदय चल रहा है, या अभी इसकी उदय भी नहीं है, परंतु पहले क्रोध की क्षपना होगी तो उसका पूरा का पूरा द्रव्य नष्ट होकर आगे वाले कषाय में चला जाएगा। क्योंकि उसमें तो पहले दूसरी कृष्टि कुछ है ही नहीं ना, बस स्पर्धक रूप से ही है। तो स्पर्धक रूप से वो स्पर्धक रूप से टर्न हो जाएगा, क्योंकि मान भी अभी स्पर्धक रूप से पड़ा है। फिर मान का अभी लोभ से चढ़ने वाला मान का भी स्पर्धक रूप से नाश करेगा, माया का भी स्पर्धक रूप से नाश करेगा। बाद में उसके अश्वकर्ण अपूर्व स्पर्धक बनेंगे और कृष्टि बनेगी। अब आगे का सूत्र, कोहे न उवट्ठी दो। पहला क्रोध का कौन सा हो गया? अश्वकर्ण हो गया। अब कोहे न उवट्ठी दो जम्मी किट्टियो करेगी, लोभे न उवट्ठी दो तम्मी मानम खवेगी। क्रोध संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ा हुआ क्षपक जिस काल में कृष्टियों को करता है, लोभ संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ा हुआ क्षपक उस काल में मान संज्वलन का क्षय करता है। संक्रमण से क्षपणा करता है, क्षय करता है। कोहे न उठी दो जम्मी कोहम खवेदी। क्रोध की क्षपणा कैसे? प्रथम संग्रह कृष्टि, द्वितीय संग्रह कृष्टि, तृतीय संग्रह, तीनों को मिलकर जो उसका काल है उसको कहेंगे क्षपणा करता है। लोभे न उठी दो तम्मी मायम खवेदी। क्रोध संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ा हुआ क्षपक जिस काल में क्रोध संज्वलन का क्षय करता है, लोभ संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ा हुआ क्षपक उस काल में माया संज्वलन का क्षय करता है। मायम बराबर है क्या? मायम मायम आगे भी मायम ही लिखा है, ठीक है। ये तो हो गया माया का क्षय करता है, तक आ गए हम। कोहे न उठी दो जम्मी मानम खवेदी, लोभे न उठी दो तम्मी अश्वकर्ण करणम करेगी। क्रोध संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ा हुआ क्षपक जिस समय मान संज्वलन का क्षय करता है, लोभ संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ा हुआ क्षपक उस समय अश्वकर्ण करण करता है। हमने देखा था ना एट ए टाइम सबका कंपेयर करके, कोहे न उठी दो जम्मी मायम खवेदी, लोभे न उठी दो तम्मी किट्टियो करेगी। यानी क्रोध संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ा हुआ क्षपक जिस समय माया संज्वलन का क्षय करता है, लोभ संज्वलन के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ा हुआ क्षपक उस समय कृष्टियों को करता है। आगे कोहे न उठी दो जम्मी लोभम खवेदी तम्मी चेव लोभे न, वो भ दिख रहा है क्या? उठी दो लोभम खवेदी, भ करना बराबर, इसमें कोई करेक्शन नहीं है क्या? 111 तक देखो, हमने जो पद देखा था ये पर देखेंगे। एक क्रोध की प्रथम स्थिति इतनी बनाई थी और प्रथम स्थिति के काल में उसने क्या किया था, अश्वकर्ण और कुष्टिकर्ण, यानी अश्वकर्ण और ये कुष्टिकर्ण के लिखा, और उसके बाद क्रोध की क्षपणा के एस लिखा। अब यहाँ क्या होगा, इसकी प्रथम स्थिति बड़ी होगी, किसकी, मान की, मान माया सबकी कंपेयर करेंगे। वो इतने यहाँ जो अश्वकर्ण किया है इस काल में ये क्रोध की क्षपणा करेगा, जिस काल में क्रोध की कृष्टि की थी यानी ये क्रोध की क्षपणा यहाँ करेगा, जहाँ कृष्टि की थी वहाँ अश्वकर्ण करेगा, और जहाँ यहाँ पर ये कृष्टिकरण होगा मान माया लोक का, ये कृष्टिकरण यहाँ होगा उसका, और उसके ऊपर मान का क्षपणा, मान की क्षपणा। अब आगे माया से चढ़ने वाला यहाँ तक उसकी ये माया के मान का क्षपणा है ना, यहाँ तक उसकी प्रथम स्थिति बनेगी, यहाँ क्या करेगा वो क्रोध की क्षपणा, यहाँ मान की क्षपणा, यहाँ पर अश्वकरण और यहाँ कृष्टिकरण, और फिर यहाँ उसका क्षपणा, उसकी माया की क्षपणा, ये माया की क्षपणा, यहाँ मान की क्षपणा की थी। अब लोभ से चढ़ने वाला यहाँ उसने प्रथम स्थिति इतनी बड़ी बनाई, स्टार्टिंग में क्रोध की क्षपणा, मान की क्षपणा, माया की क्षपणा, ये देखो ना, हमने ऐसा अभी हमने डायरेक्ट इसके साथ कंपेयर की, अभी हमें जो सूत्र पढ़े थे उन्होंने क्रोध के साथ आगे वाली डायरेक्ट कंपैरिजन करनी, यानी क्रोध की मान की माया की क्षपणा हुई। अब इसका क्या होगा, अश्वकर्ण होगा और यहाँ कृष्टिकर्ण, और बाद में लोक का उसकी क्षपणा होगा। ये हरेक के ऐसे अलग अलग, ये जो पुस्तक में संदृष्टि बनाई उसके हरेक के ट्रायंगल अलग अलग बताए, जैसे हमने यहाँ ऐसे ऐसे बताया ना, क्योंकि अलग अलग उसकी प्रथम स्थिति बनती जाती है, वो सपेक्षा से ट्रायंगल भी बना के दिखा है। लोक की पहले से इतनी बड़ी प्रथम स्थिति बनाई, ये अभी जो सूत्र पढ़े लोक का और क्रोध का एट ए टाइम उन्होंने कंपेरिजन किया।
से वो
शपक
श्रेणी पर चढ़कर लोक का करता है, और जब
भी लोक से चढ़ के
वो भी
तभी करता है,
दोनों का सेम।
देखो अभी हम इसको देखें, अभी जब ये क्रोध की कृष्टि, इसमें तो फर्क पड़ा, अभी क्रोध वाला जिस काल में मान की क्षपणा करता है उसी काल में मान वाला भी मान की क्षपणा करता है, जिस काल में ये माया की क्षपणा करता है उस काल में माया वाला भी माया की क्षपणा करता है, जिस काल में ये लोक की क्षपणा करेगा उस काल में ये सभी लोक की क्षपणा करेंगे इसके ऊपर, यानी लोक की क्षपणा का सबका काल समान। माया के लिए तीनों का माया का क्षपणा समान, मान के लिए इन दोनों का मान का क्षपणा काल समान। केवल पढ़ते हैं ना तो ख्याल में नहीं आता, उसकी थोड़ा फिगर करके समझेंगे तो समझ में आता है।
अश्वकरण में अभी तक हम लोग जो समझ रहे थे मान का अनुभव सबसे कम ज्यादा होता है,
वो इसके पहले संसार अवस्था में ऐसा था, वो अश्वकरण करने के पहले ऐसी पोजीशन थी। तो प्रश्न क्या है,
बनाई है संरचना बनाई है, इसके मूल तो केशववर्णी हुए, मतलब जो नेविगेशन सिद्धांत चक्र के बाद में अपन उसको याद नहीं करते हैं, लेकिन जो बनाई है सबसे
संस्कृत तो उन्होंने की है, परंतु
उसके बीच में कोई नहीं आता अपना आचार्य नाम अपने
संस्कृत टीका उन्होंने की है ना, केशव जी वर्णी ने की है,
केशववर्णी ने की है
कन्नड़ भाषा
उन्होंने की, और उसकी जो है समझ के हमारे लिए
क्योंकि संदृष्टियां जो है ना, मूल जो संदृष्टि की पुस्तक मिली थी हमको, उसमें भी वो नहीं थी। कितनी संदृष्टि छोड़ दी थी, अमुक अमुक पेज देखो, आपने जो पुस्तक दी थी उसमें कुछ मिली, और फिर उसमें भी कहीं कहीं तो थोड़ा सुधार भी करना पड़ा, मगर डिस्क्रिप्शन पढ़ के उसके सुधार कर अभी छपी है। प्रयत्न तो किया अभी कितना उसमें, जब अपना स्वाध्याय चलेगा कुछ, तो उसमें जो कुछ त्रुटियां हुई तो नजर में आ जाएगी।
शब्द शुद्धि और अक्षर शुद्धि बहुत कर दिया, जो पहली किताबें थी ना कहीं कोई भी सही नहीं थी।
अभी ऐसा है ना, कॉपी करने वाले का तो उसका नॉलेज नहीं होता, इतना अभ्यास तो नहीं गहरा ऐसे होता, वो तो देख कर करते, देख कर करने में तो उसका अंदाजा नहीं आता है ना कि कहाँ क्या होने चाहिए। जैसे हम गणित की बात करते हैं, गणित तो सॉल्व करने पर पता चलता है कि ये सही है कि नहीं सही है, उसमें तो करेक्शन कर सकते हैं। और टोडरमल जी साहब कहते ना, तो करेक्शन अगर बुद्धि में आए कि यहाँ अशुद्धि है तो करना अपना कर्तव्य है, ऐसा नहीं कि हम कोई अपना बहुत बुद्धिमत्ता दिखा रहे हैं। तो ख्याल में आ गई है कोई अशुद्धि, और फिर हमने दूसरे पुस्तकों से संदृष्टि से कंपेयर करके कहीं असंख्यात के बदले संख्या, संख्यात के बदले असंख्यात, हम भी कॉपी करते तो कितनी त्रुटियां तो रह ही जाती है ना। अभी हमारी ओर से और कुछ बढ़ेगी कंप्यूटर में, DTP में, वो तो अलग। जैसे अभी हम कर्मकांड जीवकांड हमने यहाँ पढ़ा स्वाध्याय में रोज का, तो उसमें जो कुछ अपनी त्रुटियां नजर में आ गई, ख्याल में आई कि ये तो कोई मिस्टेक है, क्योंकि जब हम हजार हजार पेजेस जांचते हैं तो एक एक दिन में कितने सैकड़ों पेजेस जांचने पड़ते, तो वहां तो इतना समय नहीं दे पाते। चलो, हाँ, क्योंकि वो कार्य काम होता है, और फिर वो हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है कि करने वाले जांचने वाले कोई और है, लिख के देते हैं वहां, वो लिखते समय और कुछ लिख देते हैं। चलो, तो ये हमने सभी सूत्र देखे, क्रोध के और लोभ के डायरेक्ट उन्होंने कंपेयर करके बताए। अब हम आए 111 पृष्ठ पर, ये नीचे से दूसरा पैरेग्राफ है 265 नंबर का। ये सूत्र सुगम है, यानी ये सभी सूत्र सुगम, इतनी विशेषता है कि एक सूत्र में अश्वकर्ण करण ऐसा कहने पर, यद्यपि ये आपका प्रश्न का उत्तर यहाँ आया, एक लोभ संज्वलन का अश्वकर्ण करण रूप से अनुभाग का विन्यास संभव नहीं है, तो भी अनुभाग के विशेष घात, इसका भी मैंने उत्तर दिया था ना, ये तो पढ़ा तो नहीं था हमने, देखा था कांडक के द्वारा विशेष घात होकर उसका जो अनुभाग अत्यंत हीन होना, वो कार्य तो वहां पर भी होगा। अनुभाग के विशेष घात और अपूर्व स्पर्धक विधान को देखकर अश्वकरण करण की संभावना यहाँ पर विरोध को प्राप्त नहीं होती, ऐसा ग्रहण करना चाहिए, उसका भी स्पष्टीकरण यहाँ आ गया। क्योंकि ये बात उन्होंने अश्वकरण करता है ऐसी बात बताई थी। ये 110 पेज पर नीचे के सूत्र में बताया था। अब आगे पढ़ेंगे, तथा पुष्टिकरण काल में लोभ संज्वलन की ही पूर्व और अपूर्व स्पर्धकों का अपवर्तन करके तीन बादर संग्रह कुष्ठियों की रचना करता है, ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि शेष कषाएं यहाँ पर संभव नहीं है। हमने देखा क्रोध वाला ही 12 संग्रह कुष्ठियां करेगा, मान से ही चढ़ने वाला 9 करेगा, माया से ही चढ़ने वाला 6 करेगा, और लोभ से ही चढ़ने वाला 3 ही करेगा। यह सभी विविधता रूप प्ररूपणा पुरुष वेद के उदय को ध्रुव करके, यानी पुरुष वेद तो कॉमन रखा सबने, क्रोध संज्वलन के उदय की क्षपणा के साथ मान माया और लोभ संज्वलन के उदय युक्त क्षपकों के कही गई है। कंपैरिजन किसके साथ की? क्रोध वाले के साथ मान की, क्रोध के साथ माया की, क्रोध के साथ लोभ की। इस प्रकार इस बात का ज्ञान कराने के लिए उपसंहार वाक्य को कहते हैं। मैं भी इस विषय को यहाँ समेटेंगे। ऐसा सौवा सन्निकासना पुरुष वेदेन उठिदस्य, यह सब सन्निकर्ष प्ररूपना पुरुष वेद के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक की कही गई है। सन्निकर्षण एक के साथ दूसरे को तुलनात्मक बताते हैं, वहाँ उसकी क्या पोजीशन होगी? हाँ, निकटता। यह सूत्र सुगम है, इन्हें पुरुष वेद से चढ़ने वाले के क्रोध मान माया लोभ में क्या विशेषता है उसकी बात देखिए। अब स्त्री वेद के उदय के साथ क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक की विभिन्नता का अनुगमन करते हुए आगे के सूत्र प्रबंध को आरंभ करते हैं। वो ध बराबर नहीं दिख रहा है, प्रबंध। ऊपर इति वेदेन वठिदस्स खवगस्स नानत्तम वत्त इस्साम। स्त्री वेद के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक के भेद को बतलावेंगे। यह सूत्र सुगम है, तम जहां वह जैसे जाव अंतरम न करेदी ताव नत्थि नानत्तम। वो न बराबर छपा है क्या आपके इसमें? जब तक अंतर नहीं करता तब तक भेद नहीं है, यानी अंतर करने तक तो कुछ भेद नहीं है, क्योंकि अंतरकरण के पहले दोनों ही क्षपकों में भेद के बिना प्रकृति निर्बाध पाई जाती है। अंतरकरण करने पर तो कितना ही भेद पाया जाता है, इसका विशेष ज्ञान कराने के लिए आगे का कथन करते हैं। अंतरम करे मानो इति वेदस्य परमठिदिम ठवेदी। अंतर करने वाला जीव स्त्री वेद की प्रथम स्थिति स्थापित करता है। अब तक तो क्या होता, वही उदय रूप कषाय थी शुरू से ही, तो उदय में तो उसकी तो बाकी तो ऊपर पड़े और फिर उदय में आते आते उस रूप होकर उदय में आते थे। अब क्या होगा, बीच में अंतर हो गया, तो अंतर होने से नीचे पहली स्थिति ऊपर द्वितीय स्थिति बने, और उस स्त्रीवेद वाले के भी सत्ता में तो नपुसक वेद भी है और पुरुष वेद भी है, तो जो उदय रूप नहीं होती उसकी क्या होती, वो आवली प्रमाण होकर वो तो नष्ट हो जाती है ना, आवली काल में तो निकल जाती है, तो वो तो नहीं के बराबर गिनते, उसकी चर्चा नहीं करते। तो स्त्री वेद की पहली प्रथम स्थिति बनाई अंतर्मूर्त प्रमाण। यहाँ तक ख्याल में ही बात, तो यहाँ कहते अंतर करने वाला जीव स्त्री वेद की प्रथम स्थिति स्थापित करता है। शंका उस शव के ऊपर बिंदी कोई है क्या त्रुटि? 112 में
लास्ट लाइन
जाना गुण
वेद पढ़ा डबल से लिखा
तो रखवे मानस पड़मट्टी दी है 269 में प्राकृत में
सुप्तमा।
उसका करेक्शन कहाँ दिया? शुद्धि पत्रक में 112 नंबर पड़ोमठी दी है, इतना ही लिखा।
112 नंबर पे जो है
सुत्तमाह बराबर। एक मिनट, सुत्तमाह है वहाँ पर और उसके नीचे चार लाइन
लास्ट लाइन में पहला वर्ड
पड़ोमठी दी पड़ोमठी। अच्छा वो तो है मगर वो प्रिंट नहीं दिख रहा है तो ठही।
और नेक्स्ट पेज में,
नेक्स्ट पेज में खवे मानस मानस्य खवे मानस इसमें डबल स होता है प्राकृत में। एक सौ 113 पृष्ठ पर बीच वाला सूत्र है, नौ से वेदम खवे मानस्य हुआ है, वो मानस्य करना। अभी उसको हम पढ़ेंगे, यहाँ पर 112 की बात चल रही है अपनी, नीचे से जो शंका है ना, शका हुआ है उसको शंका करना। तो कहते हैं ऐसा किस कारण से होता है, स्त्री वेद की प्रथम स्थिति क्यों बनाता है। समाधान, जिस वेद और संज्वलन कषाय के उदय से श्रेणी पर आरोहण करता है उसी की प्रथम स्थिति को यह जीव अंतर्मूर्त प्रमाण स्थापित करता है, शेष प्रकृतियों की नहीं। ये हमने पहले भी देखा था, ऐसा नियम देखा जाता है। अब इस स्त्री वेद की प्रथम स्थिति के प्रमाण विशेष का उदाहरण करने के लिए, प्रमाण विशेष ने अंतर्मूल तो बता दिया परंतु उसका निश्चित प्रमाण क्या है उसको बताने के लिए उत्तर सूत्र को आरंभ करते हैं। क्योंकि पुरुष वेद सहित जो चढ़ने वाला था ना उसकी तो प्रथम स्थिति लंबी है क्योंकि उसका उदय लंबे काल तक चलता, स्त्री वेद सहित चढ़ने वाले की इतनी लंबी नहीं है। यहाँ बताएंगे क्या कि जद्दे ही पुरुष वेदे न उठिदस्य इथि वेदस्य खवणद्धा तद्दे ही इथि वेदे न उठिदस्य इथि वेदस्य पढ़मठिदि। पुरुष वेद के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए जीव के जितने प्रमाण वाला स्त्री वेद का क्षपणा काल होता है, स्त्री वेद के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक के उतने प्रमाण वाली स्त्री वेद की प्रथम स्थिति होती है। अभी ये तो हमने संज्वलन के कषायों के बारे में देखा था, अभी वेदों की बात चलेगी। तो जब अंतर करता है तो ये स्त्री वेद से ही चढ़ने वाले ने इतनी स्थिति बनाई। कितनी बनाता है, जो पुरुष वेद से ही चढ़ता था चढ़ता है वो पहले क्या करता है, नपुसक वेद की क्षपणा करता है, फिर स्त्री वेद की क्षपणा करता है और फिर उसके ऊपर पुरुष वेद का उसका उदय और उसकी क्षपणा तो चलेगी बाद में, यानी छह नौकषा और उसके काल में उसकी चलती है, यानी उसका लंबा तक उदय चलता है। तो पुरुष वेद सहित चढ़ने वाले ने जहाँ स्त्री वेद की क्षपणा की थी पूर्ण की थी उतने इसकी पूरी पहली स्थिति बन में। पुरुष वेद सहित चढ़ने वाला पहले नपुसक वेद को खिपाता है, फिर स्त्री वेद को खिपाता है और फिर ही अपने को इन्हें पुरुष वेद के उदय सहित पुरुष वेद और छह नौ कषायों की क्षपणा चल रही है वो आगे चलकर उसकी समाप्त होगी, तो इसलिए इसकी प्रथम स्थिति छोटी होगी। पुरुष वेद सहित चढ़ने वाले के उसकी अपनी पुरुष वेद की प्रथम स्थिति बड़ी थी और इसकी छोटी होगी। पुरुष वेद के उदय से एक क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए एक क्षपक के, ये 270 नंबर का पॉइंट पढ़ रही हूं मैं, नपुसक वेद के क्षपणा काल के साथ स्त्री वेद का क्षपणा काल जितना बड़ा है होता है उतनी बड़ी है क्या, ये नपुसक वेद का क्षपणा काल और ये स्त्री वेद का क्षपणा काल, तो नपुसक वेद के क्षपणा काल सहित स्त्री वेद का क्षपण, अकेले स्त्री वेद का क्षपणा काल तो बीच में आता है, शुरू से लेना है ना, अंतर करने के पश्चात पहले नपुसक वेद का क्षपणा करता है अंतर्मुहूर्त में फिर स्त्री वेद की क्षपणा करता है, तो ये दोनों का मिलकर जितना काल है उतने प्रमाण वाली ये प्रथम स्थिति बनाता है स्त्री वेद की अपनी। तो उतनी बड़ी इस क्षपक के स्त्री वेद की प्रथम स्थिति होती है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब इस प्रथम स्थिति के भीतर नपुसक वेद और स्त्री वेद की क्रम से क्षय करने वाले के कोई नानापन नहीं है, इस बात का कथन करने के लिए आगे के प्रबंध को कहते हैं। पुरुष वेद सहित चढ़ने वाले और स्त्री वेद सहित चढ़ने वाले में क्या अंतर बताया, तो इसकी स्थिति इतनी छोटी होती है ये बताया। अब कहते इस काल में पुरुष वेदी क्या करता है, पहले नपुसक वेद की क्षपणा करता है फिर स्त्री वेद की करता है, तो इसमें भी इसमें कोई अंतर नहीं ये बात बता रहे। स्त्री वेद से चढ़े या पुरुष वेद के चढ़े दोनों ही जीव सर्वप्रथम नपुसक वेद की क्षपणा करते हैं और पश्चात स्त्री वेद की करते हैं, ये तो दोनों में समान है। नपुसक वेद को यहाँ नहीं है, स्त्री और पुरुष वेद की बात चल रही है, तो इस बात का कथन करने के लिए आगे के प्रबंध को कहते हैं। तो वहां लिखते हैं नमुसे वेदम खवे मानस नथी नानतम। नपुसक वेद का क्षय करने वाले उक्त क्षपक के, ये उक्त क्षपक की बात चल रही है, नपुसक वेद के सही चढ़ने वाले की बात नहीं चली है। स्त्री वेद सही चढ़ने वाला जहाँ नपुसक वेद का क्षय करता है और पुरुष वेद से सही चढ़ने वाला जहाँ करता है उसमें कोई अंतर नहीं, नानापन नहीं है। यह सूत्र सुगम है। कहते नऊ से वेदे खीणे इथि वेदम खवे, उक्त क्षपक नपुसक वेद का क्षय होने पर स्त्री वेद का क्षय करता है। पहले नपुसक वेद का पूरा क्षय हो जाता है फिर स्त्री वेद का हो, तो नपुसक वेद किसमें संक्रमित होगा, स्त्री वेद में? यह सूत्र भी सुगम है, इसमें कोई बात व्याख्यान करने योग्य नहीं है, यानी उसमें कोई और समझाने की जरूरत नहीं है। आगे का सूत्र, जम महंति पुरुष वेदे न उठिदस इथि वेद खवणद्धा, तम महंति इथि वेदे न उठिदस इथि वेद खवणद्धा। इसमें भी समानता बता रहे। देखो, पुरुष वेद के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ने वाले जीव के जितना बड़ा स्त्री वेद का क्षपना काल है, स्त्री वेद के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक के उतना बड़ा स्त्री वेद का क्षपना काल है। हाँ, दोनों की क्या कहता है, जितना बड़ा इसका स्त्री वेद का क्षपना काल है यहाँ से यहाँ तक, उतना ही बड़ा स्त्री वेद से चढ़ने वाले की भी अपना क्षपना काल है, इसमें कोई अंतर नहीं। पहले का नपुसक वेद के क्षपना में वो कुछ अंतर नहीं था, अभी स्त्री वेद के क्षपना में भी कोई अंतर नहीं, न काल में न अन्य किसी को।
हाँ,
संक्रमण तो सबका, परंतु एक क्षपना नहीं होती। संक्रमण तो अनुपूर्वी संक्रमण तो सब में चल ही रहा है विशिष्ट डायरेक्शन में, परंतु उसकी क्षपना नहीं कहलाएगी। क्षपना इन्हें पूर्ण रूप से नष्ट होने को क्षपना कहेंगे, संक्रमित होकर पूर्ण नाश होना।
एक प्रश्न है, स्त्री वेद तो प्रथम स्थिति में,
स्त्री वेद
प्रथम स्थिति में,
केवल प्रथम स्थिति में नहीं, मात्र द्वितीय में भी है। द्वितीय स्थिति में मैक्सिमम परमाणु द्वितीय स्थिति में है, प्रत्यागर कैसे होगा, बंद तो न पुरुष वेद का हो रहा है अभी, वो पुरुष वेद में संक्रमित होकर ऊपर जाएंगे तो कह सकते हैं उसको, फिर भी ऐसा अगल तो हो रहा है, प्रत्यागर नहीं कहेंगे उसमें।
तो प्रथम स्थिति का जो स्त्री वेद के परमाणु है वो ऊपर भी जा रहे थे, जा रहे
उसको प्रत्यागाल कहते हैं, आगाल और प्रत्यागाल, और यहाँ तो
आगाल ही है ना,
आगाल है। अब वो पुरुष वेद रूप होकर ऊपर जाते हैं कि नहीं जाते है? क्या इतने प्रोसेसेस होते हैं ना, वैसे लगती सर में बहुत स्पष्ट हुआ है इसके बारे में, कोई वहां यानी वो क्या है, कंटिन्यूअस विषय चला है, ये क्या हम कभी पीछे जाते कभी आगे आते कभी पीछे जाते, तो इसमें और सूत्र फिर बाद में उसी का प्रत्यागाल होगा। आगाल तो होने में कोई बंद की जरूरत नहीं, प्रत्यागान होने में यानी उत्कर्षण होने में बंद की आवश्यकता होगी,
नहीं होगा
वो तो कहने की पद्धति है, आगाल प्रत्यागाल बंद हो गया ऐसी जो कहते हैं, उन्होंने पहले बताया था प्रत्यागाल जहाँ नहीं है तो भी वो कहेंगे आगाल प्रत्यागाल बंद हुआ, ऑर्डिनरीली जाते हैं, प्रत्यागाल भी कहीं कहीं होता है, अब कहाँ किसका होता है किसका नहीं होता है उसकी बात देखेंगे। जैसे हमने दर्शनमुखी क्षपना की बात याद करो, मिथ्यात्व के परमाणु मिथ्यात्व में अंतर पड़ गया था, मिथ्यात्व में अंतर पड़ने पर आगाल प्रत्यागाल चल रहा था क्योंकि वहां मिथ्यात्व का बंध था और बंधने के साथ प्रत्यागाल भी चल रहा था, प्रथम स्थिति से द्वितीय स्थिति में जा रहे थे,
लेकिन बंध था मिथ्यात्व का,
बंद नहीं है इसीलिए
नहीं होगा।
अभी वो पुरुष वेद रूप होता है कि नहीं वो तो फिर थोड़ा देखना पड़ेगा, पुरुष रूप होकर भी किस स्थिति में जाता है कि नहीं जाता, ये भी देखने लायक चीज है। उसकी बात हमने नहीं सोची, थोड़ा शांति से आप जब दिशा में पढ़ लेना और कल बताना सबको। अभी होमवर्क करने वाले दूसरे आ गए, ये तो तत्काल पूछने वाले, तत्काल सेवा इनके पास। हाँ हाँ, नीचे का सूत्र हम पढ़ रहे थे, उसका हिंदी फिर पढ़ेंगे। पुरुष वेद के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ने वाले जीव के जितना बड़ा स्त्री वेद का क्षपणा काल है, स्त्री वेद के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक के उतना बड़ा स्त्री वेद का क्षपणा काल, यानी उसमें कोई अंतर नहीं। आगे आते 114 पृष्ठ पर, पुरुष वेद के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक के स्त्री वेद के क्षपणा काल से, स्त्री वेद के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक से उस यानी स्त्री वेद के क्षपणा काल में प्रमाण की अपेक्षा और उद्देश्य की अपेक्षा किसी प्रकार की विभिन्नता की संभावना नहीं पाई जाती। ये उद्देश्य शब्द की बात आई ना, उद्देश्य और उद्देश्य ये दोनों ही शब्द है। उद्देश्य का अर्थ होता है इंटेंशन और उद्देश्य का अर्थ होता है गोल। उद्देश्य की अपेक्षा किसी प्रकार की विभिन्नता की, गोल यानी उसकी क्या बात होती है, वो तो क्षपणा काल है, यानी क्षपणा काल में जो कुछ प्रोसेस वगैरह चलेगा उसमें किसी भी प्रकार की विभिन्नता नहीं है। क्या उद्देश्य है वहां, तो श्री वेद की क्षपणा करना है, ये उद्देश्य है। क्या मैंने वो डिक्शनरी निकाल के देखी हिंदी वाली, उसमें ये मिला मुझे। नहीं नहीं, उद्देश्य का अर्थ उन्होंने इंटेंशन दिया, हिंदी डिक्शनरी निकाल के देखी मैंने सुबह आज। हाँ आप निकालना, हाँ तभी तो मैं बता रही हूँ, नहीं देख के मैं बता रही हूँ, देखना। और उद्देश्य में वो गोल और अन्य अन्य शब्द उन्होंने यूज किए है। हम यहाँ
सूत्र नहीं है, वो 276 पॉइंट का पहला वर्ड है, जो है।
हाँ देखो, अभी ये पृष्ठ संख्या अभी हम 114 पर की बात, 115 की बात कर रहे हैं, आगे के पेज पर की बात। एक तो
वो सूत्र है ना, वो सूत्र के टाइम निकाल के इसके साथ जोड़
करना है। कहाँ पर
ये जो दूसरा वो ये 276 पे फर्स्ट वर्ड।
अच्छा अच्छा, 276 पर एक तो है वो खुदो एक तो। अच्छा, ऊपर का खुदो निकाल देना। हाँ। और यहाँ खुदो ऑर्डिनरी डालना।
हाँ।
मगर नीचे भी उसका कुछ, ऊपर तो सुधारा, नीचे नहीं सुधारा।
नीचे भी सुधारा,
डिजायर विश इंटेंशन और मोटिव।
उद्देश्य बिना ये वाला। हाँ
उद्देश्य,
उद्देश्य का अर्थ होता है एम है ना, गोल
गोल
है।
हाँ
इंटेंट इंटेंट यानी गोल, एम
गोल हो गया,
एम हुआ उनका, एम क्या है,
उद्देश्य उद्देश्य का है, डिजायर विश इंटेंशन और मोटिव।
डिजायर मोटिव
फिर से बताओ,
इंटेंशन
डिजायर विश ये उद्देश्य का अर्थ है, इंटेंशन कॉज प्रमोटिव इंटेंट और इंटेंशन को जानते
हैं. इंटेंट कहीं कहीं एकांत में यूज करते हैं परंतु उसमें डिफरेंस है और दोनों ही शब्द आते हैं.
देश का और भी अधिक है एनीथिंग वर्थी ऑफ नोट.
ठीक है. उद्देश्य की अपेक्षा यानी यहाँ तो कोई मोटिव इंटेंशन तो है ही नहीं है ना. उसमें क्या है उसका प्रयोजन क्या है हमारी भाषा में उसका प्रयोजन क्या है. वो दोनों का सेम है ना. स्त्रीवेद की क्षपना कर रहे. आगे बढ़े. अब सूत्र पढ़ेंगे. तदो अवगद वेदो सत्तकम्मंसे खवेदी. वह जीव तदनंतर अपगत वेदी होकर कौन सा जीव. स्त्रीवेद के क्षपना यानी स्त्रीवेद से ही चढ़ने वाला. उसने स्त्रीवेद की क्षपना कर दी. अब उसका नवक बंद रहेगा कि नहीं रहेगा. नतीन भाई हमेशा हम देखते ना वो तो उसका नवक बंद बाकी रहता है. क्यों नहीं रहेगा. हाँ तो क्या हुआ. पुरुष वेद का रहता है ना तो इसका रहने में क्या हर्ष है. पुरुष वेद का भी क्रोध में संक्रमण होता है फिर भी पुरुष वेद का नवक बंद रहता है तो इसका क्यों नहीं रहता. पुरुष वेद का बंद है इसका बंद नहीं है. ख्याल में. हाँ जिसका बंद अंतिम समय तक होगा उसका नवक बंद बाकी रहेगा. तो यहाँ क्या कह रहे हैं. अपगत वेदी हो गया. उदय तो मिट गया. उदय भी मिट गया और पूरी क्षपणा भी हो गई एट अ टाइम. तदनंतर अपगत वेदी होकर सात कर्मों का क्षय करता है. अभी ये सात कर्म कौन से है. ज्ञान आवरण दर्शन और तो बहुत अच्छा. छह नौ कषाय और पुरुष वेद. स्त्री वेद की प्रथम स्थिति के समाप्त होने पर वह क्षपक अपगत वेदी होकर पुरुष वेद और छह नौ कषायों का क्षय करता है. इस प्रकार यहाँ पर यह विशेषता जान लेनी चाहिए क्योंकि पुरुष वेद के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ने वाले जीव के सवेद पने के साथ ही यानी उसके वेद का उदय होते हुए ही छह नौ कषाय और पुरुष वेद के चिरकालीन सत्कर्म का चिरकालीन यानी अभी तक वो सत्ता में पड़े हुए बंधे हुए. अभी नया बंध भी उसका चल रहा है. जो पुराना है उसको कहेंगे चिरकालीन. सत्कर्म का निर्लेपन देखा जाता है. निर्लेपन सत्ता हमने निर्लेपन के बाद देखी थी. वो पूरा सत्ता में से नष्ट हो जाता है. तथा यहाँ पर अन्य भी थोड़ी विशेषता संभव है इसलिए उस विशेषता का ज्ञान कराने के लिए आगे इस सूत्र को कहते हैं. पहले में पहले क्या बात की थी उन्होंने. पुरुष वेद से ही चढ़ने वाला स्त्री वेद की क्षपणा करता है. बाद में पुरुष वेद और छह नौ कषाय इनकी क्षपणा चालू करते हैं. इन्हें पुरुष वेद का उदय होते हुए वो पुरुष वेद का भी क्षपणा कर रहा है और छह नौ कषाय कर रहा है. स्त्री वेद वाला क्या करता है. उसने भी स्त्री वेद की क्षपणा की. अब वो क्या वो पुरुष वेद और छह नौ कषाय की वो भी क्षपणा कर रहा है परंतु वो अपगत वेदी होकर कर रहा है और पुरुष वेदी सवेदी रहते हुए कर रहा है. ये दोनों में डिफरेंस है. तो वो सवेदी रहते हुए कर रहा था इसलिए उसका नया नया बंध भी हो रहा है अंत समय का. ये दोनों में डिफरेंस रहेगा. अब कहते सत्तन्नम पि कम्माणम तुल्ला खवणद्धा. किंतु उसके सातों कर्मों का क्षपणा काल तुल्य है. उसके पुरुष वेद के चिरकालीन सत्कर्म के साथ छह नौ कषायों के निर्लेपित हो जाने पर पुनः एक समय कम द्वावली प्रमाण काल द्वारा पुरुष के यानी पुरुष वेद के नवक समय प्रबद्धों की निर्लेपता होती है. पुरुष वेद के करना ऊपर पुरुष वेदे न नवक बंधानम निर्लेपना होदी लिखा है ना. वेद वेदक नहीं पूरी से वेदे ना नवक बंदान। देखो अभी 275 नंबर का पॉइंट पढ़ रहे हैं सेकंड लाइन में, एक समय कम द्वावली प्रमाण काल द्वारा पुरुष वेद के, पुरुष के लिखा है ना, पुरुष वेद के नवक समय प्रबद्धों की निर्लेपता होती है, क्योंकि यहाँ पर उनका पुनः उस तरह से रहना संभव नहीं है। यानी पुरुष वेद के जो नवक बंध है वो यहाँ पर आकर क्रोध रूप होकर नष्ट हो जाए, पुरुष वेद का उदय मिटने के बाद। पुरुष वेद से ही चढ़ने वाला यहाँ छह नौकर पुरुष वेद की सपना कर रहा था, तो किसकी सपना की, तो पुराने बंधे हुए, परंतु अभी भी बंधे हुए यहाँ पड़े रहेंगे ऊपर सत्ता में, तो वो फिर बाद में टर्न हो जाएगी, परंतु उसका उदय मिट जाएगा। क्रोध का अकेले का उदय रहेगा, क्रोध का तो पहले भी उदय था, परंतु अभी वेद का उदय मिट जाएगा और अकेले एक प्रकृति उदय में रहेगी क्रोध वाली। उसका कारण नहीं है कि का यही है कि कहाँ पर नहीं 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 पुरुष वेद की बात बता रहे। देखो ऊपर क्या लिखा है,
उसके वर्ड लिखा,
देखो 274 लेना, उसमें पहले दो लाइन में तो स्त्री वेद की बात की और उसके साथ क्योंकि पुरुष वेद के उदय से क्षपक शनि चढ़ने वाले जीव के सवेद पने के साथ ही क्षण उपचार पुरुष वेद के चिरकालीन सत्कुणों का निर्लेपन देखा जाता है।
उसकी विशेषता बताइए।
हाँ, उसके पुरुष वेदी जीव के पुरुष वेद के चिरकालीन सत्कर्म के साथ छह नौकशाओं के निर्लेपित हो जाने पर पुनः एक समय कम द्वावली प्रमाण काल द्वारा पुरुष वेद के नवक समय प्रबद्धों की निर्लेपता होती है, क्योंकि यहाँ पर उनका पुनः उस तरह से रहना संभव नहीं है। अवगत वेद भावे वर्तमानस पुरुष वेद बंधा असंभवेन तथ नवकबद्ध समय प्रबद्धानम अच्छन्ता संभवादो। ये अभी स्त्रीवेद की बात कर रहे हैं। उसका कारण यही है, पहले मैं पढ़ती हूँ फिर उसको सुधारेंगे, कि अपगत वेद रूप से विद्यमान उस क्षपक के पुरुष वेद का बंध संभव नहीं होने से वहां पर नवक समय प्रबद्धों का रहना अत्यंत असंभव है। वो नहीं है न यही है करना, समझ में आया कहाँ करना। अपवेद वेद रूप से अपगत वेद अवगत वेद भावे वेद के बदले गत करना अपगत वेद रूप से विद्यमान ऊपर लिखा देखो अवगत वेद भावे वर्तमानस पुरुष वेद बंध असंभव है ना, उसके पुरुष वेद का बंध संभव नहीं है। क्या कहना चाहते हैं, पुरुष वेद के चिरकालीन सत्व जो उसका कर्म था पुरुष वेद का वो पूरा का पूरा निर्लेपित हुआ, परंतु उसके नवक बंध है वो दो समय कम दो अवली में बाद में निर्लेपित हो जाते हैं। स्त्री वेद में ये बात कुछ संभव ही नहीं है, क्यों, क्योंकि उसका वेद का उदय रुक गया तो बंध भी रुक गया है, और जब उसकी वो क्रोध की और सॉरी क्रोध की नहीं सात नौकशाओं की सपना चलती है, देखो ये स्त्री वेद का अंतिम समय उदय का, यहाँ तक उसने पुरुष वेद को बांधा, अब यहाँ बंधे हुए पुरुष वेद जब ये अपगत वेदी होता है तो यहाँ पड़े हैं, केवल उतने ही नहीं वो तो सब पहले वाले भी सब पड़े, यानी जिसको हम नवक बंध कहते हैं यहाँ लास्ट लास्ट में बंधे हुए वो भी है यहाँ पर, तो वो कितने काल में क्षपित हो गए? दो समय कम दो अवधि। तो ये सब ये पुरुष वेद का क्षपण काल तो इतना लंबा है, तो उस काल में पुराने और नए जो कुछ वहां पर पड़े वो सब कुछ क्षय हो गए। पुरुष वेद के लिए ऐसा नहीं, पुरुष वेद का उदय यहां तक है, इसके लिए उसके नवबंध और इसके आगे कुछ काल तक रहेंगे। स्त्रीवेद ने जो लास्ट लास्ट में बंधे थे वो तो सात नौकरशयन की क्षपना काल में पूरे खिर जाते हैं, पूरे उसकी क्षपना हो जाती है, क्योंकि वो अंतर्मूर्त काल तक वो पुरुष वेद की क्षपना चलती है छह नौकरशयन के साथ, तो उसके अलग से नवबंध बाद में रहते ही नहीं है, सब निष्ठ हो गए उसके।
यानी दोनों का क्रोध वेदक काल का पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट सेम है?
क्रोध वेदक तो शुरू से ही चल रहा था, क्रोध वेदक सबका ही चल रहा था।
जो छह नौकरशयन का सपना है
हाँ,
वो काल का पॉइंट
सेम है, क्योंकि दोनों की स्त्रीवेद सपना का काल सेम है और दोनों का ही सात नौकरशयन की सपना यहाँ से शुरू हुई है और वो भी काल सेम है, परंतु इसका नवबंध रहेगा, इसका नवबंध नहीं रहेगा। इतनी इतनी बात है। हाँ क्रोध मान मान लो इसमें वो डिफरेंस तो बाद में बताएंगे। जैसे हमने पुरुष वेद में चार प्रकार देखे वैसे स्त्री वेद में भी चार प्रकार हो गए।
स्त्री वेद से चढ़ा हुआ शुद्ध अवेदी होता है और पुरुष वेद से चढ़ा हुआ अशुद्ध अवेदी होता है, उसका वो नव बंद रह जाता है।
उसको वेदी कहते ही नहीं, अपगत वेदी हो जाता है। शुद्ध अशुद्ध की बात नहीं, सत्ता में रहने से कोई फर्क नहीं होता, नहीं तो आप ग्यारहवें गुण स्थान को अशुद्ध वितरागी कहेंगे। उपशम समय दृष्टि को भी अशुद्ध से उनके लिए माइक की जरूरत नहीं है। हाँ दोनों को श्रीवेद क्षपना वो नवक बंध है एक स्टोर है बरोबर। शेषेषु पदेषु नत्थि नानत्तम, शेष पदों में विभिन्नता नहीं है। वो तो उन्होंने निकाल दिया था, तो कैसे ये कैसे उन्होंने सूत्र ही निकाला है? मगर ऊपर कहीं निकाला, नीचे का रखा,
वो तो निकालती
ये अर्थ एक ही है ना, अभी निकाला नहीं
था। नहीं, पर वहाँ पे वो फ्लावर के साइन लगा है इसीलिए।
हाँ
सूत्र के साइन
लगा, सूत्र ही नहीं है वहाँ पर। वो कुदो शब्द नीचे 276 में इंक्लूडेड है। हाँ वो वहां से निकाल कर रेगुलर टाइप में उसमें ले लिया उन्होंने, क्योंकि इससे आगे के शेष पदों में विभिन्नता का लेश भी संभव नहीं है। इसके आगे के पद कौन से है? क्रोध की क्षपना, मान की क्षपना, ये जो बाकी हमने देखे थे पूरे ही, उसमें कोई विशेषता नहीं। यानी पुरुष वेद सहित चढ़ने वाले के जो क्रोध के उदय सहित चढ़ रहे हैं, पुरुष वेद प्लस क्रोध और यहाँ स्त्री वेद प्लस क्रोध, तो जब ये छह नौकरशयन की वगैरह जो सपना पूरी हुई उसके बाद उन दोनों में अंतर नहीं।
फिर जो पुरुष वेद का नवक बंद हुआ और ये दो समय कम हो जाएगा तो उसके बाद जाएगा ना?
हाँ, मगर वो सत्ता में डिफरेंस होगा, उसमें प्रोसेस में कोई नहीं होगा। हाँ क्रोध में, तो इसके लिए वो बाद में होगा, इसके लिए तो पूरा यहाँ पर हो जाएगा। ये डिफरेंस है, इतना तो डिफरेंस है। पुरुष वेद से ही चढ़ने वाले के नवक बंध का संक्रमण बाद में होगा, स्त्री वेद से ही चढ़ने के वहीं पर समाप्त हो गया उसका छह नौकरशयन के साथ। ये डिफरेंस है, आगे कोई डिफरेंस नहीं।
वो पांच की,
हाँ सत्ता की बात, जो
पांच की सत्ता होता
है, हमने जब सत्ता के स्थान देखे थे ना, सत्व स्थान, तब की बात चल रही थी, क्योंकि पहले तो ये आठ कशाओं का क्षय करके आया था, तब तेरह हुई थी इसकी, तो नपुंसक वेद गया तो बारह हो गई, स्त्री वेद गया तो ग्यारह हुई, अब ये छह नौकर शायद खाली गए तो पांच की हो गई और इसके नवक बंद है कुछ काल तक, बाद में वो जब चला गया पुरुष वेद तब जाके उसकी चार की सत्ता, यानी चार का बंद तो शुरू हुआ था यहाँ पर पुरुष वेद। स्त्री वेद पहले 21 में से 8 करके ना 13 पर आ गया था, फिर 12 पर आया, फिर यहाँ 11 की और 11 में से डायरेक्ट चार हो गया। पांच का पुरुष वेद से चढ़ने वाले में ही मिलता है केवल, ना नपुंसक वेद से चढ़ने वाले में मिलता है ना स्त्री वेद से चढ़ने वाले, ये डिफरेंस है। वो उसकी पांच की सत्ता यहीं पर मिलेगी। लेश भी संभव है, एक वाक्य पढ़ा था हमने 115 पृष्ठ पर 276 पॉइंट पहली लाइन लास्ट में। इस प्रकार इतने सूत्र प्रबंध द्वारा स्त्री वेद के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ने वाले क्षपक के विभिन्नता के विचार को समाप्त कर अब नपुसक वेद के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ने वाले क्षपक को स्वीकार कर वहां प्रकृत प्ररूपणा की विभिन्नता का अनुसंधान करने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को आरंभ करते। एतो नौ से वेदेन उठिदस खवगस्स नानत्तम वत्तईसाम। इससे आगे नपुसक वेद के उदय से एक क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक की विभिन्नता को बतलावेंगे। यह सूत्र सुगम है। जाव अंतरम न करेगी ताव नत्थि नानत्तम। जब तक अंतर नहीं करता है तब तक कोई विभिन्नता नहीं है। यह सूत्र सुगम है, यानी अपने अपने उदय से चढ़ रहे बस। अंतरम करे मानो नौ से वेदस्य परम ठिदिम ठवेदी। अंतर करने वाला क्षपक नपुसक वेद की प्रथम स्थिति स्थापित करता है। यह एक विभिन्नता यहाँ पर जानना चाहिए, क्योंकि स्त्री वेद से ही चढ़ने वाले ने स्त्री वेद की प्रथम स्थिति बनाई थी, पुरुष वेद से ही चढ़ने वाले ने पुरुष वेद की बनाई थी, तो ये एक विभिन्नता आ गई। क्योंकि यहाँ पर स्त्री वेद और पुरुष वेद को छोड़कर एक नपुसक वेद की ही प्रथम स्थिति स्थापित करता है। अब इस नपुसक वेद की प्रथम स्थिति के प्रमाण विशेष का उदाहरण करने के लिए इस सूत्र को कहते हैं। उसकी कितना प्रमाण वाली स्थापित करता है तो कहते हैं जम महंति इत्थि वेदे न उठिदस इत्थि वेदस परम अठिदि, तम महंति नौंस वेदे न उठिदस नौंस वेदस परम अठिदि। ये डिफरेंस है। अभी स्त्री वेद वाले ने इतनी इतनी बड़ी प्रथम स्थिति बनाई थी, पुरुष वाले ने तो इतनी बड़ी बनाई थी पुरुष वेद की, नपुसक वेद वाले की यहाँ तक नहीं होगी, यहाँ तक ही होगी। जितनी स्त्री वेद की कटे उतनी इसकी होगी। बाकी दो वेद वाले क्या करते थे, पहले यहाँ तक नपुसक वेद की क्षपणा पूरी करते थे। अब इसने स्टार्टिंग तो कर दी नपुसक वेद की क्षपणा, वो पूरी नहीं होगी, स्त्री वेद की क्षपणा के साथ आगे चलती रहेगी। यहाँ पर उसने स्टार्टिंग तो कर दी नपुसक वेद की क्षपणा, ये थ्रू आउट यहाँ तक चलेगी।
तो इसकी नपुंसक वेद की क्षपणा का कल पढ़ा।
हाँ, जितना उसका स्त्री वेद की क्षपणा का कल, अब ये पढ़ेंगे ना हम ये इसको। देखो यहाँ तो शुरू हो गया पहला पॉइंट, हमने हिंदी अर्थ पढ़ा दिया ना,
नहीं
स्त्री वेद के ये प्राकृत पढ़ा तो हिंदी जैसे लगते है। स्त्री वेद के उदय से एक क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए एक क्षपक की, स्त्री वेद की जितनी बड़ी प्रथम स्थिति होती है, नपुसक वेद से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक के नपुसक वेद की उतनी बड़ी प्रथम स्थिति होती है, यानी दोनों की प्रथम स्थिति प्रमाण में तो समान हो गई। अब उसको बता रहे हैं, स्त्री वेद के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक के स्त्री वेद की प्रथम स्थिति के साथ नपुसक वेद के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक के नपुसक वेद की प्रथम स्थिति सदृश प्रमाण वाली ही होती है, अन्य प्रकार की नहीं, यह उक्त कथन का तात्पर्य। इन दोनों की प्रथम स्थिति में कोई अंतर नहीं है। अब इस प्रथम स्थिति के भीतर नपुसक वेद और स्त्री वेद का क्षय करने वाला क्या अक्रम से क्षय करता है या क्रम से क्षय करता है? ऐसी आशंका होने पर निशंक करने के लिए आगे का सूत्र प्रबंध आया है। अब बताते हैं क्या प्रोसेस है। तदो अंतरदु समय कदे नउ से वेदम खवेदुम आढ़त्तो। तदनंतर अंतर करने के दूसरे समय में नपुसक वेद का क्षय करने के लिए आरंभ करता है। सबने वही कार्य किया था, पुरुष वेदी है, स्त्री वेदी है या नपुसक वेदी है, अंतर करने के पश्चात वाले समय में तीनों ही नपुसक वेद की शपना आरंभ करते। यह सूत्र सुगम है। उते जद्दे ही पुरुष वेदेन उवट्ठिदस्स नउ से वेदस्स खवणद्धा तद्दे ही नउ से वेदेन उवट्ठिदस्स नउ से वेदस्स खवणद्धा गदा न ताव नउ से वेदो खीयदि। क्या कहना चाहते हैं? हिंदी पढ़ूंगी फिर बताएंगे आप। पुरुष वेद के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ने वाले क्षपक के नपुसक वेद का क्षपना काल जितना बड़ा होता है, नपुसक वेद के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ने वाले क्षपक के नपुसक वेद का उतना बड़ा वेद हुआ है, वो उतना बड़ा क्षपना काल व्यतीत हो जाता है तो भी नपुसक वेद का क्षय नहीं होता। क्या कहा? जितने काल में स्त्री वेद वाले ने और पुरुष वेद वाले ने नपुसक वेद की क्षपना की थी यहाँ पर, उतने काल में ये नपुसक वेद वाला भी क्षपना तो उसने आरंभ की थी परंतु उसकी क्षपना पूरी नहीं होती, चलती रहेगी। परंतु अब तक वो स्त्री वेद की क्षपना नहीं कर रहा था, यहाँ से वो स्त्री वेद की भी क्षपना शुरू करेगा। यानी सबका स्त्री वेद की क्षपना का आरंभ एक ही समय से, सबका नपुसक वेद का प्रारंभ भी एक ही समय से, परंतु नपुसक वेद सहित चढ़ने वाले की क्षपना पूरी नहीं होती उतने काल में, चलती रहती आगे।
हाँ,
काल बता रहे। हाँ,
तो द्वितीय स्थिति में से सभी टर्न हो जाएगी के बाद से भी कुछ करना है।
कब?
जब नपुसक वेद की पुरुष वेद के साथ जब नपुसक वेद की सपना करता है तभी उसके प्रथम स्थिति तो अब एक आगे
पुरुष वेद के साथ है, नहीं उस कंपेयर कर रहे आप।
हाँ, तो
ये पुरुष वेदी है,
ये प्रमाण बनी थी वो तो निकल जाएगी पहले, और उसकी द्वितीय स्थिति में संपूर्ण नष्ट हो जाएगा नपुसक वेद की सपना। अभी यहाँ पे क्या है, उसकी प्रथम स्थिति बनी बनी और द्वितीय स्थिति में भी उसके प्रभाव पड़ेगा नपुसक वेद। तो ये नपुसक वेद की सपना काल है, उतने काल में द्वितीय स्थिति में सभी नष्ट हो जाएगी।
हाँ, नहीं नहीं, सभी कुछ पड़े है, मैक्सिमम माल तो द्वितीय स्थिति में पड़ा है, प्रथम स्थिति में तो गिने चुने नहीं सके, वो भी गलित है और वो तो इतनी नष्ट भी हो गई है। प्रथम स्थिति तो अल्प है ना, मैक्सिमम माल तो द्वितीय स्थिति में, क्योंकि अपकर्षण करके प्रथम स्थिति बने, असंख्या का भाग है, असंख्या का भाग है, वो असंख्या गुणा
परमाणु की संख्या क्या करता है वो बहुत अंतर है।
तो और क्या समझ?
नहीं नहीं, मैं क्या पूछ रहा था कि द्वितीय स्थिति में जितने परमाणु जो पुरुष वेद के साथ चले उसकी सभी की सपना हो गई।
हाँ,
उतने ही काल में, क्योंकि वहां पे आकर्षण भारत का तो वही है जो, अरे संक्रमण बाजाकर जो है वो तो वही चल रहा है, तो द्वितीय
उसमें कोई फर्क तो होगा ही ना, क्योंकि इसके सभी पूर्ण नहीं हुए, उसके पूर्ण हुए हैं, पूर्णता होगी इसके। अभी आगे पढ़ेंगे। ये विशिष्ट प्रकृति का ही वो ऐसा है सहज स्वभाव कि उसके ऐसे उसके उदय से ही चढ़ने वाले के वो पूरा नहीं होता। यह लिखा ना, अभी उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर 282 पढ़ना है, उसका ऊपर सूत्र तो पढ़ लिया हमने। पुरुष वेद के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए क्षपक के नपुसक वेद के क्षपना काल मात्र काल के बीत जाने पर भी यानी उतना काल इसका भी बीत गया है नपुंसक वेद की क्षपणा करते हुए, फिर भी इस नपुंसक वेद के उदय से क्षपक शनि चढ़ने वाले क्षपक के नपुंसक वेद का तो क्षय होता नहीं, क्योंकि अंतर्मूर्त प्रमाण अपनी प्रथम स्थिति अभी भी आगे संभव है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। क्षपणा सबकी एक टाइम, हाँ, तीनों की एक पॉइंट में शुरुआत, अंतर करने के दूसरे समय से, हाँ, नपुंसक वेद के उदय से ही चढ़ने वाले की क्षपणा लंबे काल तक चलती। इससे आगे स्त्री वेद की भी क्षपणा का आरंभ कर, अब एक साथ दोनों का क्षपणा चल रही है उसकी, स्त्री वेद की भी और नपुंसक वेद की, यानी जहाँ पुरुष वेद वाले ने और स्त्री वेद वाले ने स्त्री वेद की क्षपणा प्रारंभ की थी उसी पॉइंट पर ये भी करता है। डिफरेंस क्या है इसकी, नपुंसक वेद की दिश चल ही रही है अभी, दोनों का ही क्षय करता हुआ अपनी प्रथम स्थिति के अंतिम समय में एक साथ ही दोनों की भी अंतिम फाली उनकी क्षपणा करता है। इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे के सूत्र को प्रारंभ करते हैं। स्त्री वेद की कैसे देखी थी हमने, ये 13 वाला 12 पर आ गया था, नपुंसक वेद उसका पूरा नष्ट हो गया था और फिर वो 11 पर आ गया था। नपुंसक वेद से ही चढ़ने वाला 13 से स्टार्टिंग किया था, अभी यहाँ 12 नहीं हुआ उसका, तो अभी यहाँ से वो 13 का 13 ही था ना, श्री वेद की भी क्षपणा चालू की इस पॉइंट पर एक समय में उसे 11 बनना, मगर कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख आता है एक समय के लिए वो, हाँ, एक समय के लिए स्त्री वेद का क्षय करके 11 रह गया, लास्ट एक समय के लिए नपुंसक वेद रहता, ऐसा भी कथन है। अभी इन्होंने उसको नहीं लिया, एक साथ ले लिया, परंतु एक समय का डिफरेंस बताया है कहीं कहीं,
उसको 12 भी मिल जाएगा,
हाँ, एक समय के लिए 12 होगा,
और यहाँ पर जो है 11 होगा।
अब आगे का सूत्र पढ़ेंगे। तदो से काले इथि वेदम खवेदुम आढ़त्तो नऊ से वेदम ती खवेदी। पश्चात अनंतर समय में जब स्त्री वेद का क्षय करने के लिए आरंभ करता है तब नपुंसक वेद का भी क्षय करता है, यानी वो अंतिम फाली दोनों के एक साथ थे। पुरी सवेदे न उठिदस जम्मी इथि वेदो खीनो तम्मी चेव नऊ से वेद न उठिदस इथि वेद नऊ से वेदाच दो भी सह खिज्जंती। एक खविज्जंती भी पाठ है उसमें। अपने यहाँ और कोई करेक्शन है क्या? अभी कुछ नहीं है। 19 पर अभी टाइम है उसको। तो हमने ऊपर देखा ना से काले, तो कहते पश्चात अनंतर समय में जब स्त्री वेद का क्षय करने के लिए आरंभ करता है, नहीं ये नहीं, नीचे आ गए, हाँ, सहखिज्जंती खविज्जंती पढ़ा था मैंने, तो मैंने ऊपर का सूत्र पढ़ा, अभी वो बीच वाला सेकंड नंबर का, पुरुष वेद के उदय से एक क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए एक क्षपक के जिस समय स्त्री वेद क्षीण होता है, नपुंसक वेद के उदय से एक क्षपक श्रेणी पर चढ़े हुए एक क्षपक के उसी समय ससय हुआ, उसी समय स्त्री वेद और नपुंसक वेद दोनों ही एक साथ क्षय को प्राप्त होते हैं। तदो अवगत वेदो सत्त कम्मों से खवेदी तत्पश्चात अपगत वेदी होकर, यानी उदय मिट गया अभी उसका, सात नौकशा रूप कर्मों को क्षय करता है। कर्मों को के कर्मों का क्षय करता है। नपुसक वेद का उदय था उसका तो क्षय हो गया, परंतु सत्ता में पुरुष वेद के परमाणु पड़े हैं, तो छह नौकशांक के साथ उसकी क्षपणा हो जाए। सत्तन्नम कम्माणम तुल्ला खवणत्ता, सात कर्मों का क्षपणा काल तुल्य है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, पुरुष वेद से ही चढ़े या नपुसक वेद से ही चढ़े, सात नौकशांक का या सी वेद, सात नौकशांक का क्षपणा काल सबके लिए समान है। शेषेषु पदेषु, यानी जो उसके बाद जो पद आने वाले हैं, आगे का जो प्रोसेस है, यथा पुरुष वेदन उठिदस अहीनम अधिरिक्तम तथ नानत्तम, शेष पदों में जैसी विधि पुरुष वेद के उदय से क्षपक श्रेणी पर चढ़ने वाले क्षपक की कहे आए हैं, वैसी ही विधि हीनता और अधिकता से रहित अहीनम अधिरिक्तम यहां भी जाननी चाहिए। हीनता से रहित अधिकता कहाँ आई? अधिरिक्त नहीं रहित, अतिरिक्त नहीं रहित, पीछे क्या लिखा है सूत्र में 117 नंबर पेज, सूत्र वाले पेज दिन परिशिष्ट वाले, दो सौ पांच नंबर पर, अहीनम अधिरिक्तम तथ्य नानत्तम, तत्त नानत्तम अहीनम अधिरिक्तम तथ्य नानत्तम, तत्तन अनंतम तक का अर्थ क्या किया? नानापना नहीं है, देखो मैंने वैसी यहाँ है, कोई यहाँ डिफरेंस नहीं, इतनी बात बता रहे हैं। गतार्थ होने से यहाँ पर कुछ भी व्याख्या या नहीं है, क्योंकि नाना जीव विषय अनिवृत्तिकरण परिणामों के तीनों ही कालों में विलक्षणपना असंभव होने पर यह नानापने के विचार का अभिनिवेश कैसे घटित होता है, ऐसी आशंका होने पर उत्तर दे आए हैं कि वेदों और कषायों के उदय संबंधी, यानी यह ऐसा डिफरेंस क्यों है, तो पहले भी उसका उत्तर दिया था कि वेदों के और कषायों के उदय संबंधी भेद का आश्रय करके करण परिणामों के अभिन्न स्वभाव वाला होने पर भी यथोक्त रूप से नाना रूप कार्यों के रचना रूप व्यापार के होने में विरोध नहीं आता, उसकी क्षपणा में जो कुछ क्रम जो डिफरेंस होता है उसमें ये बन सकता है। इस प्रकार इतने प्रबंध द्वारा सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान पर्यंत विस्तार के साथ चारित्र मोह के विषय में क्षपणा विधि का प्ररूपण करके अब सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान के अंतिम समय विषयक प्ररूपणा संबंधी अवशेष कथन का निरूपण करने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं, यानी अंतिम समय में क्या विशेषता है उसकी बात यहाँ बताएंगे। जादे चरिम समय सुहम सांप्रायो जादो तादे नामा गोदानम ठिदिबंधो अठ मुहूर्ता, जब अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक हो जाता है तब नाम कर्म और गोत्र कर्म का स्थितिबंध आठ मुहूर्त होता है, वेदनीय ठिदिबंधो बारह समूहता, वेदनीय कर्म का स्थितिबंध बारह मुहूर्त होता है, यही उनका जघन्य स्थितिबंध है। तिन्नम घादिकम्मानम ठिदि संत ठिदि बंधो अंतो मुहूर्तम, तीन घाती कर्मों का स्थितिबंध अंतर्मूर्त होता है। तिन्नम घाती कम्मानम ठिदि संत कम्मम अंतोमूर्तम। तीन घाती कर्मों का स्थिति सत्व अंतर्मूर्त होता है। ऑफकोर्स बंध से सत्व अधिक होगा, फिर भी दोनों का कथन जो है अंतर्मूर्त है। नामावोध वेदनीयानम ठिदि संत कम्मम असंख्यज्ञानी वस्सानी। नाम गोत्र और वेदनी कर्म का स्थिति सत्व असंख्यात वर्ष प्रमाण है। स्थिति बंध कितना देखा हमने अभी? आठ मूर्त। नाम गोत्र का आठ और वेदनी का बारह। गतार्थ होने से यहाँ पर कुछ व्याख्यान करने योग्य नहीं है। तो कहते मोनिय से ठिदि संत कम्मम नश्यति। मोहनीय कर्म का स्थिति सत्व नाश को प्राप्त होता है, यानी वो क्षपणा का अंतिम समय है। मोहनीय की क्षपणा का, क्योंकि एक एकदम खिर गया कब्ज हो गया। अब इसकी विशेषता कल पढ़ेंगे। आप कहते मित्रागी हो गए, अभी क्या पढ़ना था? जावानी के ज्ञान से सोझे लो कालो सोवा।